योगी वो है जो करता है त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का, निंदा स्तुति हानि और लाभ में, निंदा स्तुति हानि और लाभ में, एक समान वो रहता
ओम शांति। आज का टॉपिक है स्वस्थ एवं खुशनुमा जीवन जीने की कला। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। जो बीमार रहना चाहते हैं हाथ उठाओ। कोई बीमार रहना नहीं चाहता। आप चाहते हैं? सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, सभी खुश भी रहना चाहते हैं। बाप दादा भी हमसे यही आश रखते हैं कि हमारा मेरा एक एक बच्चा कैसा हो, खिला हुआ पुष्प, गुलाब का पुष्प, सदा खिला हुआ पुष्प के समान, सदा खुशनुमा चेहरा हो। ऐसे बाबा ने लास्ट मुरली में भी और इस मुरली में भी बताया, क्योंकि हम बाबा के सब खुशनसीब बच्चे हैं। तो हमें, हम ऐसा कैसे बने, तो बाबा की मुरलियों से भी और साइंस के, विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित हम कुछ आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे। इन बातों को गहराई से समझने के लिए अभी हम अगले दो मिनट के लिए अपने मन बुद्धि को एकदम एकाग्र करेंगे। सीधे होके बैठे, सभी अलर्ट होके बैठ जाएं और दो मिनट एकांत में एकदम अंदर चले जाएं, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, बाकी सब विचारों को ट्रैफिक बंद कर दें, सिर्फ एक बाबा और एक मैं और मेरा बाबा, इसी संकल्प में स्थित हो जाएं सभी दो मिनट के लिए, ताकि हमारे अंदर जो बातें डिस्कस की जाएं वो हमारे अंदर, हमारे जीवन आचरण में आ सके। चलिए सभी दो मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाएं। ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, आज इस कलयुग के अंतिम दौर में सभी मनुष्य रोगी हैं। बीमारी चारों तरफ बहुत बड़े रूप में फैल चुकी है, चाहे मन की बीमारी, चाहे तन की बीमारी। कहा जाता है आजकल 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। 100 लोगों को कितनी बीमारियां? 200। लगभग एवरेज हर एक आदमी को दो बीमारी तो है ही है, शरीर की बीमारी और मन तो सबका बीमार है ही है, 100% ना? सबसे बड़ी बीमारी चिंता है ना, चिंता तो सबको है ना, सबके अंदर भय भी है, सबको गुस्सा भी आता है। इसलिए बाबा ने पिछले 2-3 मुरलियों से बाबा हमें क्रोध मुक्त बना रहे हैं, है ना। बाबा ने हमसे दृढ़ संकल्प भी कराया कि हमें अभी क्रोध नहीं करना है। तो ये जो आज लोगों को नींद नहीं आती है, गुस्सा करते हैं, लोगों को उदासी हो जाती है ना, ये जो 5 विकार हैं पूरे हर मनुष्य में व्याप्त हैं। तो ऐसी हालत में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हॉस्पिटल्स इतने सारे बन गए हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे आ गए हैं, है ना, सब तरह के डॉक्टर्स हैं ना, किंतु आप देखें तो बीमारियां, अस्पताल आज भी भरे हुए हैं। जब कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, चारों तरफ देखो तो एकदम इतनी भीड़ होती है पेशेंट्स की कि हम, अगर डॉक्टर को टाइम ही नहीं मिलता, लंच करने का टाइम नहीं मिलता, डिनर करने का टाइम नहीं मिलता है। आज सबसे ज्यादा बिजी कौन है? सबसे बिजी कौन है? सबसे ज्यादा कमाई किनकी होती है? डॉक्टर्स की, है ना। तो डॉक्टर आज सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया है ना समाज का। बच्चे भी जब हायर सेकेंडरी पास करने के बाद सब बच्चे क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं ना। सबसे सॉट आफ्टर, अगर एडमिशन लेना हो अगर MBBS में, तो 25-30 लाख रुपए एडमिशन के लगते हैं ना। तो आज सबसे, मतलब इंसान के सामने सबसे बड़ी भयानक समस्या है बीमारियों की, मन की और तन की बीमारियां। किंतु आज मेडिकल साइंस अपने आप को क्या पा रही है? मेडिकल साइंस पा रही है कि हम सबका इलाज नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस के पास सिर्फ इलाज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक माना सिर्फ शरीर का इलाज करते हैं, वन डायमेंशनल केयर है, सिर्फ बॉडी का इलाज। जितनी दवाइयां बन रही है बॉडी के लिए बन रही है, जितनी रिसर्च हो रही है बॉडी के ऊपर हो रही है, जबकि ये प्रूव हो चुका है कि लगभग 95% बीमारियां मन से जन्म लेती हैं। हमारे विचारों से शरीर बीमारी का जन्म होता है, हमारी भावनाओं से बीमारी का जन्म होता है, हमारा एटीट्यूड क्या है उससे बीमारी का जन्म होता है, हमारी स्मृति में क्या भरा हुआ है वो उससे बीमारी का जन्म होता है। तो पहले मन में बीमारी आती है, उसके बाद शरीर में बीमारी आती है। और आपने सुना भी होगा कि जब भी कोई डॉक्टर दवाई देते हैं किसी भी तरह की, या ऑपरेशन कर सर्जन या फिजिशियन, वो सबके सब परमात्मा को याद करते हैं। सर्जन भी ऑपरेशन करने से पहले किसको याद करता है? परमात्मा को याद करता है ना। ऑपरेशन करने के बाद भी दुआएं मांगते हैं कि भगवान हमारे इस पेशेंट को ठीक कर देना, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, है ना। अभी भी थोड़ी देर पहले ही हमारे पास शांतिवन में किसी को हार्ट अटैक आया और बहुत सीरियस हालत में उसको ट्रॉमा सेंटर में लेके आए, हार्ट बंद हो गया था पूरा। तो हमने काफी देर हम कोशिश करते रहे और लगभग सवा घंटा के बाद वो उस पेशेंट को हम रिवाइव कर पाए, है ना। तो मतलब तो भी हम लोग सभी बाबा को याद करते हैं कि बाबा इसको कैसे भी इसकी लाइफ वापस आ जाए, है ना। और अभी भी बाद में होने के बाद भी लगातार यही दुआएं मांगते हैं कि बाबा इसको ठीक कर देना। तो सबसे बड़ा डॉक्टर कौन हुआ? सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? परमात्मा ना, शिव बाबा। और बाबा ने कल क्या कहा मुरली, परसों मुरली में क्या कहा? परमात्मा कहां रहता है? परमात्मा कहां रहता है? परमात्मा, वो सबसे बड़ा डॉक्टर कहां रहता है? हमारे साथ रहता है ना। हमारे साथ भी रहता है और साथ साथ कहां रहता है? हमारे दिल में रहता है ना। कहां रहता है? इस वाले दिल में, इस वाले दिल में, इस वाले दिल में। ये तो मैंने बहुत सारे खोल के देखे हैं, ठीक है, है ना। इसमें तो सिर्फ खून खून भरा होता है, चार चैंबर्स में। परमात्मा रहने की जगह नहीं है इसमें ना। तो दिल में कौन से दिल में रहता है? आत्मा के दिल में रहता है ना। आत्मा का दिल है बुद्धि। आत्मा का दिल कौन सा है? बुद्धि, है ना। बुद्धि को ही दिल कहते हैं। तो परमात्मा इस दिल में रहता है। तो हम बाप के दिल में रहते हैं और बाप कहां रहता है? हमारे दिल में रहता है, है ना, इस दिल में। तो किस दिल में रहेगा बाप? कौन से दिल में रहेगा? सबके दिल में रहता है? सबके दिल में रहता है क्या? सबके दिल में रहता है परमात्मा? नहीं रहता है। किस दिल में रहेगा? जो दिल सच्ची और साफ होगी उसमें परमात्मा रहेगा। और सच्ची और साफ दिल वाले बच्चे ही बाप के दिल में रह सकते हैं। कौन से दिल वाले? आज की मुरली का स्लोगन भी याद होगा आपको, स्वच्छता और सच्चाई, सत्यता ही सच्ची पवित्रता है। याद है? स्वच्छता और सत्यता ही सच्ची सच्ची पवित्रता है। तो जिनका दिल सच्चा और साफ है उनके दिल में ही परमात्मा रह सकता है। अर्थात सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर जिसके दिल में रहता है उसको बीमारी आ सकती है क्या? उसको तो बीमारी आ ही नहीं सकती है। तो जिसके साथ हमेशा डॉक्टर 24 घंटे रहे वो बीमार कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो पहले तो हम समझे दिल क्या चीज है। जैसे मैंने आपको बताया आत्मा एक ज्योति बिंदु है। आपको पता होगा मम्मा का एक सबसे अच्छा, मम्मा जो थी, मम्मा का सबसे फेवरेट गीत कौन सा था? याद है आपको? किसी को पता है कौन सा गीत सबसे फेवरेट था मम्मा को? मम्मा का फेवरेट, सबसे फेवरेट गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो बाबा की मुरली में भी बार बार आता है, आपने पढ़ा होगा, भ्रुक्ति के बीच चमकता है अजब सितारा। उसका मतलब यही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो जिस कवि ने कविता लिखी है, एक्चुअली इस कवि के बारे में मैंने पढ़ा है, इस कवि का जो एक फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, बहुत ही जिगरी दोस्त होता है, उसकी दिन में डेथ हो जाती है। अचानक उसके साथ होता है, अचानक उसको शायद हार्ट अटैक होता है, क्या होता है, अचानक उसका हार्ट बंद हो जाता है और वो मर जाता है। उसी शाम को उसका सिमेट्री में उसको दफन करके आते हैं। तो उसी शाम को कभी बाहर बैठा है, आसमान में तारे निकले हुए हैं और बहुत गमगीन है आज वो, बहुत उदास है। तो वो सोचता है कि मेरा दोस्त जो ठीक ठाक था, दिन में बिल्कुल ठीक था, अचानक उसे क्या हुआ? उसके सब मेरे से बात कर रहा था, अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, हार्ट बंद हो गया और चला गया। तो ऐसी क्या चीज है इंसान के अंदर जो कि शरीर को चलाती है, जिसके कारण शरीर चलता है? तो आपको पता होगा क्रिश्चियन लोगों में ये मान्यता है कि एक स्टार होता है और स्टार गर्भ में आता है, उससे फिर वो बच्चा बनता है। जैसे ईसा मसीह के बारे में भी है ना, एक स्टार ऊपर देखा गैब्रियल ने, फिर उसके बाद उसका जन्म हुआ। तो मतलब तब उसको ये ध्यान आता है कि एक आत्मा है, एक स्टार है जो सदा चमकता रहता है। जब तक वो चमकता रहता है तब तक शरीर काम करता है, जब वो चमकना बंद कर देता है यहां पर, तब वो काम करना बंद कर देता है। तो उसको ये तो समझ आया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसने लिखा, पर उसको ये समझ नहीं आया कि ये सितारा कैसे शरीर को चलाता है, इतने बड़े शरीर को कैसे चलाता है, हार्ट को कैसे चलाता है, लंग्स को कैसे चलाता है, दिमाग को चलाता है, आंखों को कैसे चलाता है, पेट को कैसे चलाता है, उसको समझ में नहीं आया। इसलिए उसने लिखा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मुझे आश्चर्य है कि आप कैसे सब कुछ चला रहे हो। तो आत्मा कैसे चलाती है, यहां पर बैठी हुई सारे शरीर को कैसे चलाती है? आत्मा है तो सब कुछ चल रहा है, और आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं चलता है। चलता है क्या? आत्मा निकल जाए एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ रुक जाता है, हार्ट भी रुक जाता है, लंग्स भी काम करना बंद कर देते हैं, खाना पचना बंद हो जाता है, दिमाग है किंतु दिमाग काम नहीं करता है, आंखें हैं किंतु आंखों से देख नहीं सकते हैं, कान है किंतु कान से सुन नहीं सकते हैं। ऐसी क्या चीज है आत्मा में, ऐसी क्या एनर्जी है जिससे शरीर चलता है, शरीर जिसे बढ़ता है, बाल बढ़ते हैं, सब कुछ हमारी बॉडी बढ़ती घटती है, ऐसा कैसा हो सकता है, खाना पचता है पेट में? तो आत्मा से सात एनर्जी कहो, सात गुण कहो, आप सब जानते हैं जो बाबा ने, उसको तो ज्ञान नहीं था ना, उस आदमी को, उस कवि को ज्ञान था नहीं था, इसलिए उसको पता नहीं था, किंतु बाबा ने हमें सारा नॉलेज दिया है कि आत्मा कैसे शरीर को चलाती है। तो और परमात्मा के लिए अगली दो लाइन कवि ने परमात्मा के लिए लिखी है, उसमें क्या लिखा है, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, मतलब बियॉन्ड द मून बियॉन्ड द सन बियॉन्ड द स्टार्स, वर्ल्ड के ऊपर, वर्ल्ड कहां तक है, जहां तक सूर्य चांद तारे हैं, उसके ऊपर एक और स्टार है, एक और सितारा है जो नॉट ए डायमंड लाइक ए डायमंड, जो हीरे जैसा है। हीरा शब्द क्यों लिया, क्योंकि हीरे में सात रंग की लाइट नजर आती है, जब उस पर लाइट डाले जाते हैं तो सात रंग दिखाई देते हैं उसके अंदर। तो एक ऊपर है डायमंड सूर्य चांद तारों के पार, एक सितारा जो हीरे जैसा है, वो परमात्मा के लिए इन द स्काई कहा उसने, क्योंकि उसका मन ऊपर नहीं जा सका आसमान से, इसलिए उसने होना चाहिए अबाउ द स्काई। तो मैं आत्मा हूं और परमात्मा सात गुणों का सागर है, सात एनर्जी का सागर, और वो परमात्मा सात एनर्जी से हम आत्माओं को शक्ति चार्ज करता रहता है, और आत्मा इन सात एनर्जी से शरीर को चलाती है, इसलिए वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, क्योंकि आत्मा इस शरीर को किससे चला रही है, सात एनर्जी से चला रही है, सात गुणों से चला रही है। जब तक वो सात गुण निकल के सात गुणों की लाइट या सात एनर्जी की लाइट जब तक शरीर में जाती रहती है, शरीर चलता रहता है, जैसे ही वो एनर्जी जानी बंद हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है। इसलिए सात के वजह से सतो प्रधान शब्द आया, सात, सतो माना सात, प्रधान माना फुल, फुल इन सेवन, सातों गुणों में जब आत्मा संपन्न है, फुल है, तो उसको सतो प्रधान कहते हैं। सतयुग में आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी, सातों एनर्जी से भरपूर थी, बहुत एनर्जी थी, तो शरीर में कहीं कोई बीमारी नहीं थी, ना मन में बीमारी थी ना तन में बीमारी थी। त्रेता युग में सतो हो गई, थोड़ी एनर्जी कम हो गई, 25% कम हो गई, आधा कलप बीतने के बाद एनर्जी आधी हो गई। रजो माना शाम, तो एनर्जी आधी होने से क्या हुआ, बीमारियों का आना शुरू हुआ, मन में बीमारी आने लगी, पहले विकार आए, देह अभिमान आया, फिर लोभ आया, मोह आया, फिर क्रोध आया, काम विकार आ गया, फिर उनके बाल बच्चे आ गए। तो जैसे जैसे ये विकार आने लगे, वैसे वैसे सातों एनर्जी और कम होती चली, रजो प्रधान हुए, फिर रजो हुए, और तमो माना बिल्कुल एनर्जी कम हो गई, और रोग और ज्यादा बढ़ गए, तो शुरू शुरू आज से 40-50 साल पहले भी 100 में से सिर्फ एक आदमी को हार्ट अटैक आता था, वो भी 70 के बाद, और आज लगभग 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट अटैक आते हैं, और वो भी 25 साल में 20 साल में आने लगे। आज 50% हार्ट अटैक 50 से पहले आते हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं। 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, 12-13% को डायबिटीज हो गई, 40% लोग मोटे हो गए, 10% को सांस की बीमारी हो गई है, 10% को आंखों की बीमारी, नाक कान गले की बीमारियां हो गई, 25% को एसिडिटी की बीमारी हो गई, हड्डियों की बीमारी 20% लोगों को है। तो अगर देखो तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, हर आदमी बीमार है। हमसे पूछो, जब हम कहीं जाते हैं ना, पहले अभी तो हम रिलेटिव के पास जाते नहीं है, किंतु बाय चांस हम कभी किसी रिलेटिव के पास चले जाए, लोग हमें पानी भी पूछते नहीं है, सब अपनी पर्ची ले लेके आ जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को देख दो, मेरे को देख दो, मेरे को देख दो, सब रिश्तेदारी भूल के मरीजों की लाइन लग जाती, किसी के पास भी जाओ तो छोटे से लेके बड़ों तक की बीमारों की लाइन लग जाती। तो ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि आज आत्मा तमोप्रधान माना सातों गुण कम हो गए, बहुत कम हो गए, खत्म नहीं हुए किंतु लगभग ना के बराबर सातों एनर्जी रह गए। इस कारण सभी लोग बीमार हैं, इसी कारण सब लोग दुखी हैं, इसी कारण सब लोगों को डर लगता है। बीमारी शब्द कहां से आया? बीमारी शब्द दो शब्दों से बना है, बी माना भय, मारी माना बने रहना, तो बीमारी माना भय बने रहना। ये जो भय हमें बने रहता है ना हमेशा, क्योंकि हम अपने आप को देह समझते हैं, अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, इंजीनियर, मां, माता समझते हैं, पिता समझते हैं, पत्नी समझते हैं, पति समझते हैं, तो ये जो रोल कॉन्शियसनेस आ गई ना, या बॉडी कॉन्शियसनेस या मेटीरियल कॉन्शियसनेस, मेरा घर है, मेरी कार है, मेरे बच्चे, मतलब जो चीज मेरी है, मेटीरियल जो भी चीज प्रॉपर्टी मेरी है, ये तीनों की तीनों चीजें, बॉडी भी, रोल भी, मटेरियल भी, तीनों चीजें विनाशी हैं। इसलिए मन में भय बने रहता है, मेरा शरीर आज ऐसा है, अभी मैं 50 साल का हो गया, मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये हो गया, पता नहीं कल उसको हार्ट अटैक आ गया मुझे भी आ जाएगा, उसको स्ट्रोक पैरालिसिस हो गया कल मुझे भी हो जाएगा, है ना, मेरी शक्ल आज ऐसी हो गई, बाल सफेद हो गए, अभी कैसे, अभी क्या होगा, है ना। तो मन में भय बने रहता है, रोल में भी ऐसा ही है, माँ बाप हैं या कुछ भी, जो भी अपने आप को समझते हैं, बिजनेसमैन है, आज मेरा बिजनेस अच्छा है, कल घाटा ना हो जाए, पैसा बढ़ाना है, नुकसान ना हो जाए, तो ये जो भय है ना लगातार, मटेरियल का भी भय रहता है, ये जो लगातार भय बने रहता है, इस कारण आज भय सभी को है, इसी कारण सभी बीमार है। बाबा कहते हैं ना, भय में ही खा रहे हैं, भय में ही सो रहे हैं, भय में ही चल रहे हैं, सब भय में है इसलिए सब बीमार है। और दूसरा इंग्लिश में डिस ईज है ना, इंग्लिश में शब्द है ना, डिजीज कहते हैं ना, एक्चुअली दो शब्दों से बना है, डिस ईज, लॉस ऑफ ईज, ईज माना शांति, लॉस ऑफ शांति, शांति खत्म हो चुकी सभी की, इसलिए सब लोग डिजीज है, सब लोग बीमार। ठीक है, तो ये जो है, इस कारण से आज सभी लोग बीमार हो गए। अब ठीक कैसे करें, तो अब हम इसकी गहराई में जाते हैं आगे, कि आत्मा सात गुणों से शरीर को चला रही है। आत्मा एक बिंदु है, जैसे सामने बल्ब है ना, इस बल्ब से क्या निकल रहा है, दो चीज निकल रही है, एक तो लाइट निकल रही है, एक गर्मी निकल रही है। देखो तो मुझे पसीना आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, मुझे क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत तेज बल्ब है, गर्मी है ना इसके अंदर, तो लाइट और गर्मी दो चीज निकलती है। ऐसे आत्मा भी एक बिंदु है, एक सोर्स है, जिससे सात चीज निकलती है। पहली एनर्जी ज्ञान निकलती है, ज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। ज्ञान वैसे तो बहुत बड़ा है, ज्ञान के बारे कहा जाता है, पूरे सागर को शाही बनाओ, पूरे जंगल को कलम बनाओ, पूरी धरती को कागज बनाओ, तो भी ज्ञान खत्म नहीं होगा, क्योंकि सार रूप में ज्ञान में चार बातें आती हैं। इंग्लिश में कहते हैं उसे ABCD, अल्फाबेट्स में ज्ञान चार बातों का है, कितना? ए, बी, सी और डी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ऐसे नहीं, ये जो वो तो हमने बचपन में पढ़ा था, किंतु अभी जो नई जो अल्फाबेट्स का मतलब है, ए फॉर आत्मा, ए फॉर आत्मा, बी फॉर, सभी बोलो, ए फॉर, बी फॉर बाबा, मतलब आत्मा का पिता क्या है? परमात्मा, बाबा, परमात्मा के लिए शब्द किया गया बाबा। और सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन माना हमारे सर्व संबंध उसके साथ है, वही मेरी मां है, वही मेरा पिता है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा सतगुरु है, वही मेरा बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, सब कुछ सब संबंध उसके साथ है। और डी फॉर ड्रामा, संसार एक ड्रामा है, नाटक है, इसमें हम सब एक्टर्स हैं। कोई किसी की पत्नी क्यों बनती है या पति क्यों बनता है? वही उसकी पत्नी क्यों बनती है, दूसरा कोई क्यों नहीं बनता है? वही उसको पसंद क्यों आता है, पसंद क्यों आती है? क्योंकि उसको देखते ही लगता है हाँ इससे मेरा हिसाब किताब है, इसको देना लेना बाकी है, तो पसंद आ जाता है। नहीं तो घर वाले भी प्रेशराइज करके शादी कर ही देते हैं। तो बच्चे भी हमारे यहां, वो बच्चा हमारे यहां क्यों आता है? क्योंकि उससे भी हमारा अकाउंट होता है, कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब है। जब तक हिसाब किताब है बच्चा हमारे पास रहता है, हिसाब किताब पूरा होते ही वो चला जाता है, या तो शादी होकर चला जाता है या उसकी ट्रांसफर हो जाती है, वो चला जाता है। नहीं ऐसा होता है? प्रैक्टिकली होता नहीं होता है? कोई बच्चा हमें बहुत सुख देता है, कोई हमें दुख देता है। जिससे हमने लिया होता है तो उसको हमें देना पड़ता है, और जिसको दिया होता है वो हमें सुख देता है ना? तो ये हमारा अकाउंट है, वो बच्चा हमारा नहीं है। अभी भी आप कहानी सुन रहे थे ना सविता बेन से, या मां है या बहन है या पत्नी है, वो कौन है? वो किसी का संबंध हमारे साथ गहरा नहीं है, कोई हमारे साथ जाएगा नहीं। तो ये अकाउंट है, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा हो रहा। तो ज्ञान जो है क्या है? एबीसीडी। और आपने देखा होगा इंद्रधनुष होता है ना, जब बारिश होने के बाद आसमान में इंद्रधनुष बनता है, उसमें सात रंग होते हैं। पहला वायलेट होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ऑरेंज, रेड, चार सात रंग होते हैं ना, उनमें बीच में कोई गैप नहीं होता है, एक के बाद एक लगे होते हैं। ऐसे ही ज्ञान से ही पवित्रता आती है। जब एबीसीडी मन में आया तो मन पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हुआ ना ज्ञान से, ज्ञान आने से पवित्र होता है। इसलिए परमात्मा पहले कौन है? ज्ञान का सागर है, फिर पतित पावन है। हमें कैसे कैसे पावन बनाता है? हमको ज्ञान सुना करके हमको पावन बनाता है, ऐसे पावन नहीं बनाता है, ज्ञान से पावन बनाता है। तो ज्ञान से हम पावन बन जाते हैं, पवित्र मन और बुद्धि पवित्र हो जाते हैं। पवित्रता से शांति आती है, शांति से प्रेम आता है, प्रेम से सुख होता है, सुख से आनंद आता है, और आनंद से शक्तियां आती हैं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात को छोटा पहाड़ जैसी बात को राई बना देने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो ये सात आठों के आठों शक्तियां, इन ये सातों एनर्जी जो है बॉडी की एक एक सेल के लिए आवश्यक है। हमारा शरीर 70,000 बिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। पूरे विश्व की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, 700 करोड़ है, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 70,000 बिलियन। हर कोशिका सांस लेती है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स चाहिए, और फिर उनको यूज करके वो कोशिका टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। तो पूरी की पूरी बॉडी में जब वो 70,000 बिलियन सेल तब तक काम करती हैं जब तक आत्मा है, आत्मा नहीं है तो काम करना बंद कर देती है। तो आत्मा इन सात एनर्जी से बॉडी की हर सेल को चला रही है, कि तो एक अंग विशेष के लिए एक विशेष एनर्जी चाहिए। जैसे तो हमारी बॉडी 70,000 बिलियन सेल से बनी है, और उसमें 5 हमारे कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, स्किन। ये पांच कर्मेंद्रियां हमको संसार से कनेक्शन रखने के लिए मिली हैं। आंखों से हम देख सकते हैं, इशारा भी कर सकते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, मुख से हम खाते भी हैं, बोलते भी हैं, और स्किन से हम सेंस करते हैं, आसपास के वाइब्रेशन हम सेंस कर सकते हैं। आसपास कैसा, आंखें ना हो तो भी हमें स्किन से पता लग सकता है कि हमारे पास कौन खड़ा है। उनके वाइब्रेशन, जो अंधे लोग होते हैं उनकी, उनका बच्चा, उनकी पति पत्नी मां सब उनको पहचान लेते हैं, स्किन के वाइब्रेशन से पहचान लेते हैं, है ना। तो ये हमारे कर्मेंद्रियां हैं जिससे हम सेंस करते हैं। फिर हमारे आठ अंग हैं। ब्रेन जो है हमारा, उसको ज्ञान चाहिए, आत्मा ज्ञान से ब्रेन को नरिश करती है। जितना एबीसीडी हमें क्लियर होता है उतना ही हमारा ब्रेन अच्छा काम करता है, ज्यादा क्रिएटिव होता है, उतना अधिक बैलेंस होता है आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू और एचक्यू, चार क्वेश्चंट हैं इंटेलिजेंस। जितना हमारा इन चार एबीसीडी जितना क्लियर होगा उतना ही हम ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब सहयोग करने की शक्ति। तीसरा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, उतना हम सबसे भाई भाई का व्यवहार कर सकते हैं। चौथा होता है हैप्पीनेस कोशियंट, खुश रह सकते हैं। ये नया नया अभी चौथा अभी आया है कुछ साल पहले, लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस, लास्ट ईयर 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये चार क्वेश्चन, जितना इन चारों का बैलेंस होगा उतना ही हम चारों हमारे दिमाग में अच्छा काम, हम ज्यादा रिसर्च अच्छी कर सकते हैं, नई नई बातें खोज सकते हैं। फिर पवित्रता से हमारी आंखें, आत्मा आंखों को, नाक कान मुख को और त्वचा को और इम्यून सिस्टम को नरिश कर रही है। शांति से लंग्स को नरिश करती, फेफड़ों को नरिश करती है। जितनी अधिक शांति होगी उतना ही हम सांस गहरा और स्लो लेते हैं, धीरे धीरे सांस चलता और गहरा चलता। जितना अशांति होगी, डर होगा, चिंता होगी, सांस जल्दी जल्दी चलेगा और ऊपर ऊपर चलेगा। जैसे नॉर्मली हम 14 बार एक मिनट में सांस लेते हैं, हमें साल गिन के नहीं मिलते हैं, श्वास गिन के मिलते हैं। जैसे 14 के हिसाब से अगर हम अपने आप मान लीजिए एक अंदाजा लगाएं कि मेरे 10 साल बाकी हैं, 14 पर मिनट के हिसाब से, अगर मैं हर समय क्रोध करूं, चिंता में रहूं, डरता रहूं तो क्या होगा, श्वास तेज तेज 14 की बजाय 20 बार चलेगा, 25 बार चलेगा, और मेरे श्वास जो 10 साल चलने चाहिए थे 7 साल में खत्म हो जाएंगे, 7 साल के बाद शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से अकाल मृत्यु हो जाती है। इन विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ग्रसित में से ग्रसित होने पर क्या होता है, श्वास जल्दी जल्दी खर्च होते हैं और हमारी अकाल मृत्यु मतलब समय से पहले मृत्यु हो जाती है। और इसकी बजाय अगर हम राजयोग का अभ्यास करें, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें, इन सातों गुणों में नर्मण करें तो क्या होता है, ये श्वास हमारे 14 की बजाय 10 8 सांस ही एक मिनट में चलेंगे, 8 ही काफी है, 6 ही काफी है। तो वही 10 साल की बजाय यही श्वास चल करके हमारे 20 साल चल जाएंगे, तो आयु बढ़ी ना। इस तरह से योग से आयु बढ़ती है। तो शांति से आत्मा फेफड़ों को नरिश करती है, प्यार से आत्मा हार्ट को नरिश करती है। जितना अधिक प्यार यहां पर होगा उतना ही हार्ट की नसें खुली रहती हैं, ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, हार्ट अच्छा पंप करता है। प्यार की बजाय गुस्सा जाएगा तो क्या होगा, हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अकाल मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही आत्मा लीवर को और पेट को खुशी से नरिश करती है। जितनी खुशी अच्छी होती है ना अंदर, तो किसी ने कहा था खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी है तो खाना बहुत अच्छा पच जाता है, खुशी ना हो तो, उदासी हो तो जो भी खाना खाओ पचेगा ही नहीं, यही पड़ा रहेगा, एसिडिटी बन जाएगी, एसिड बन जाएगा, खाना पचेगा नहीं, आते हैं आगे चलेंगे नहीं, कब्जी रहेगी या फिर बार बार लेटने जाना पड़ेगा, बार बार स्नान करना पड़ेगा। आत्मा आनंद से हार्मोन्स, हमारी यहां पर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास, एड्रिनल, ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन निकालती हैं, जिससे सारी बॉडी में सामंजस्य स्थापन होता है। तो ये आठों हार्मोन जो हमारे डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो सारी बॉडी में हार्मनी पैदा करते हैं, ये हार्मोन्स को चलाने के लिए हम आनंद चाहिए। आत्मा आनंद से इन ग्लैंड्स को नरिश करे। आनंद की कमी होगी तो थायराइड की बीमारी हो जाएगी, आनंद की कमी होगी डायबिटीज हो जाएगी, उदास रहेंगे तो। जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बात में फील करते हैं, वो जल्दी उदास हो जाते हैं, तो उनको थायराइड की बीमारी हो जाती है, पैनक्रिया डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, कड़वाहट मन में रखो तो डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। समय से पहले जीन्स माता पिता से मिलते हैं कि तू वो समय पर कब आएगी बीमारी, 70 में भी आ सकती है, 50 में भी आ सकती है, 60 में भी आ सकती है, 30-25 में भी आ सकती है। अगर आप जल्दी उदास रहना शुरू कर दो तो जल्दी बीमारी आ जाएगी, ठीक है। और जितने हमारे अंग है ना, ये जोड़ है ना, हड्डियां, बॉडी में हड्डियां हैं, आप सोचो इंसान में हड्डियां ना होती आदमी कैसा होता बताओ? अगर आदमी में हड्डियां ना होती तो आदमी कैसा होता, कैसी शक्ल होती उसकी? सोफे पे बैठे होते, कुर्सी बैठने की आवश्यकता थी क्या? गोल गोल गेंद मांग के घूमते रहते ना, पैर होते क्या? तो हड्डियां इंसान का फ्रेमवर्क है ना, ढांचा किससे बनता है? हड्डियों से। और ये जितने भी जोड़ हैं, गर्दन है, कमर है, हाथ है, ये चेस्ट है, नी ज्वाइंट्स है, हर जोड़ का कनेक्शन शक्तियों से है। गर्दन का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ना, कमर का मतलब झुकना है ना, हाथ का मतलब सहयोग करना है ना, घुटना का मतलब क्या है? उठ करके चलना है ना। तो ये जो आंखों का, आंख नाक कान का मतलब क्या है? परखना है ना, गर्दन का मतलब हाजी नाजी करना भी है ना, नहीं? तो ये जितनी जो शक्तियां हैं इनका कनेक्शन हड्डी इनसे है, जोड़ों से है। अगर वो शक्ति कमी हो जाती है जोड़ वो जल्दी खराब हो जाता है। आप जो लोग जिद करते हैं ना उनकी गर्दन जल्दी खराब हो जाती है, जिद्दी लोग होते हैं ना, गर्दन कैसे अटका के रखते हैं, अकड़ के रखते हैं, गर्दन जल्दी खराब हो जाएगी। जो छोटी छोटी बात को राई का पहाड़ बनाते हैं कमर जल्दी खराब हो जाती है, जो फैलाव बहुत करके रखते हैं उनके घुटने जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। विस्तार को समेट कर ही रखते हैं, समेट के रखते हैं तो उनकी ये ज्यादा ठीक रहते हैं। जो सहयोग नहीं करते उनके हाथ जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना, रिमेटाइड जल्दी हो जाता है, रिमेटाइड आर्थराइटिस। तो ऐसे जोड़ों का कनेक्शन हमारी शक्तियों से है। इसलिए जैसे जैसे मैंने बताया, हड्डियां हमारा ढांचा है ना, इंसान उसके बगैर इंसान नहीं है, ऐसे ही शक्तियों के बगैर इंसान इंसान नहीं है। कहते हैं ना, अरे तुम इतने इंसान होकर भी थोड़ा थोड़ी बात सहन नहीं कर सकते हो, आप इंसान होकर भी थोड़ी सी बात को परख नहीं सकते हो, आप इंसान होकर भी छोटी सी बात को राई का पहाड़, राई को आपने पहाड़ बना दिया, आप इंसान है क्या? ऐसे बोल देते नहीं बोल देते? आप इतनी सी बात का सामना नहीं कर सके क्या? तो इंसान की पहचान किससे है? शक्तियों से है। इंसान इंसान इसलिए कि उसके अंदर शक्तियां हैं, जानवरों में शक्तियां नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं, ना के बराबर, किंतु वो शक्तियां इंसान में है, इसलिए वो इंसान है। और सातों एनर्जी मिलकर के बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, पसीने के द्वारा और किडनी के द्वारा। हमारी एक एक किडनी में 100 करोड़ छन्नियां, खून छानने की छन्नियां होती हैं, जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, 100 करोड़ इधर, 100 करोड़ इधर। तो एक घंटे में पूरा खून छन जाता है, तो 24 घंटे में 24 बार खून छनता है हमारा, साफ होता है। एक बार खून अगर मार्केट में जाके, हॉस्पिटल में जाके सफाई कराना पड़े ना, डायलिसिस कराना पड़े, 3,000 रुपए लगते हैं, तो हमारी किडनी 72,000 रुपए का काम हमारा रोज करती है। कितना कितना काम करती है? 72,000 रुपए का काम रोज करती है। हम कितनी पैसे देते हैं किडनी को? सैलरी देते हैं किडनी को? हम नहीं देते ना, पर ध्यान नहीं करते हैं उसका ना। तो इस तरह से हमारी आत्मा शरीर को चला रही है। तो आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, जो आपको बताया। मन माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा, ये एनर्जी मन के थ्रू बॉडी में जाती है। मन क्या चीज है? मन में 4 एस्पेक्ट होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। हिंदी में कहेंगे स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। स्मृति, वृत्ति, भावना और स्मृति माना मेमोरीज, वृत्ति माना एटीट्यूड, भावना इमोशंस और संकल्प माना थॉट्स, विचार। तो ये जो स्मृति, वृत्ति, भावना, संकल्पों के थ्रू आत्मा बॉडी में एनर्जी भेजती है। अगर आपकी स्मृति नेगेटिव है प्यार के बारे में, मान लीजिए प्यार की एग्जांपल लें, प्यार के बारे में आपके पुरानी जो मेमोरीज है वो नेगेटिव है, कि दुनिया में सब लोग हैं स्वार्थी हैं, किसी से कुछ सच्चा प्यार नहीं करता है, सब धोखा देने वाले होते हैं, है ना, साधु महात्मा भी सब गड़बड़ करने वाले होते हैं, है ना, तो कोई आदमी आपको प्यार से बात भी करेगा तो क्या आप क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ये मतलब ही है, तो उससे प्यार से बात नहीं करेंगे, तो एनर्जी वो प्यार का लेन देन नहीं हुआ ना, तो एनर्जी प्यार हार्ट में नहीं पहुंचेगा। आपके मन में बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं, आप भले भले आप मुरली सुनते हैं पर जाती नहीं है वो बात, वो प्यार की बात, बाबा का प्यार, परमात्म प्यार भी हार्ट में जाता नहीं है, क्योंकि मन में पुरानी स्मृतियां नेगेटिव है, एटीट्यूड आपका नेगेटिव है, आपके मन में प्यार के प्रति नेगेटिव भावनाएं हैं, आप बहुत सेंसिटिव हो गए हैं सोच सोच के, सोच सोच के, है ना, आपके विचार नेगेटिव हमेशा उठते रहते हैं प्यार के बारे में, तो वो भाव, वो जो प्यार है वो आपके दिल में नहीं पहुंचता है, तो इसलिए हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, हार्ट की नसें स्पैज़म में चली जाती हैं, अकड़ जाती हैं, इस तरह से हार्ट की बीमारी होती है। अस्थमा क्यों हो जाता है, क्योंकि आप हमेशा अशांत रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में डरते रहते हैं, एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, इस पर कई रिसर्च हुई है और पाया गया कि जो एस्थमेटिक्स होते हैं उनको एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है ना, उनको कुछ बातों से जीवन में एंजाइटी होती है, जब जब वो एंजाइटी बढ़ती है उनका एस्थमा का अटैक पड़ जाता है, अगर उनकी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए सही ढंग से उनको शांति की परिभाषा बताई जाए और शांति का अनुभव कराया जाए तो एस्थमा के अटैक कम हो जाते हैं, अगर प्यार की अनुभूति कराई जाए तो हार्ट की बीमारी कम हो जाती है, खुशी की अनुभूति कराई जाए तो पेट की एसिडिटी की बीमारी, अल्सर की बीमारी, पेट की और बीमारियां, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कम हो जाता है। तो परमात्मा इन सातों गुणों का सागर है, तो अगर हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें तो सातों गुण क्या होंगे, हमारे अंदर भर जाते हैं, और फिर जो है अगर टीम जो मन है, मन को भी पॉजिटिव बनाना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव अगर मन हो तो एनर्जी जल्दी जल्दी अंगों में जाती है, और नेगेटिव मन हो तो एनर्जी यहां ब्लॉक हो जाती है। अब जो मुख्यतः ये तो हमारी बॉडी का सिस्टम है जिसके द्वारा हमारा शरीर चलता है, अब हमें रोग क्यों आए, खुशी कहां चली गई, जब से पांच विकार आए, ये पांच विकार क्या है बेसिकली, जैसे काम विकार है, काम विकार बेसिकली अगर हम देखें, इससे पहले मैं आपको दूसरे तरह से बताऊं, शांति क्या चीज है, शांति किसे कहते हैं, आपको पता है शांति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं शांति, नॉर्मली हम एक मिनट में 15 विचार करते हैं, 15 विचार हमारे मन में उठते हैं नॉर्मली, मतलब उसमें से 7-8 विचार तो हमारे कॉन्शियस विचार होते हैं, कॉन्शियस माना जो हम जानते हैं, 7-8 विचार मन में चित्त में होते हैं, 7-8 विचार सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं, तो ऐसे 15 विचार एक मिनट में उठते हैं, तो जब 15 विचार हैं तो हम नाम शांत है, नाम अशांत है, बीच में है, इसकी बजाय अगर आप देखो, अभी आप करके देख लो एक बार, आप अपने अंदर चले जाओ, शांत हो जाओ मन में, कोशिश करो शांत होने की, आंखें बंद कर लो, या ऐसा करो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, करो करके देखो एक मिनट, कैसा महसूस हो रहा है आपको, भी अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा लगता है, यहां पर ठंडा ठंडा लगता है ना, ठंडा ठंडी फीलिंग आती है, शांत हो गया, शांत कैसे हुआ, हमारे विचार कम हो गए, 15 की बजाय अगर 8 विचार हो जाते हैं एक मिनट में तो हम शांति की अनुभूति करते हैं, जैसे आंखें बंद कर लेते हैं ना, संसार से कनेक्शन कम कर लिया तो भी विचार कम हो गए, तो जैसे विचार हमारे कम हुए, 8 विचार हुए तो शांति की अनुभूति हुई, और गहरे चले जाओ, 8 की बजाय 6 कर दो तो क्या होगा, आज दिन में जो भी गलतियां की ना हमने वो अपने आप याद आएंगी, आज मैंने देखो उसको डांट लगाई, मुझे डांट लगानी नहीं चाहिए थी, उसकी गलती तो उसकी नहीं थी, गलती मेरी थी, मैं ईगो में आके उसको गलत बोला, उसके प्रति प्यार आएगा, नहीं नहीं मैं फोन करके सॉरी कह देता हूं उसको, प्यार की फीलिंग इमर्ज होती है, तो 8 विचार जब आए तो शांति की फीलिंग आई, और 6 हो गए तो क्या होगा, प्यार की फीलिंग, स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी, नहीं मैंने अहंकार में उसको हर्ट किया, मैंने उसको गलत बोला, तो थोड़ी मन में प्यार की फीलिंग आएगी, तो जो 6 है वो प्यार है किंतु वो भी शांति है, गहरी शांति है, 8 शांति है किंतु 6 उससे भी गहरी शांति है, और 4 विचार हो गए तो चार माने एबीसीडी, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सारा संबंध उसके साथ है, और संसार रूपी नाटक में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो चार ही विचार रहे ना, तो चार विचार हुए तो क्या हो जाएगा, सुख की फीलिंग, अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग। एक होता है इंद्रियों का सुख, खाने का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, ये इंद्रियों का सुख है, छूने का सुख, ये इंद्रियों का सुख, और ये है आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख। एबीसीडी माना आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख। तो चार विचार माना अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, तीन विचार माना और गहरे अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, और दो माना ए और बी, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं, दो ही विचार रह गए तो आनंद की फीलिंग। आनंद कभी होता है, जब सिर्फ दो होते हैं ना, आत्मा और परमात्मा, बस मैं और मेरा बाबा, तो आनंद, उसमें खो गए हम। और एक माना सिर्फ बाबा, सर्वशक्तिमान, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज, उसको हम सीड स्टेज भी कह सकते हैं, बीज रूप स्थिति भी कह सकते हैं, परम धाम की स्थिति। तो वो स्थिति में चले जाओ, तो एक माना परम धाम की स्थिति, दो तीन और चार फरिश्ता स्थिति। एक में सिर्फ क्या है, सातों जो आठों शक्तियां ना, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, पहाड़ जैसी बात को राय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन, सामना, समाना, सहयोग, ये हम आठों शक्ति का स्वरूप बन जाते हैं, परमात्मा की याद में खो जाते हैं, सिर्फ परमात्मा बाबा सिर्फ, और कुछ सब खत्म हो जाता है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दादी जानकी कहती ना, मेरा बाबा, सभी बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो ये जब स्थिति है ना कि बस बाबा रह गया और कुछ नहीं, तो वो है हमारी सबसे शक्तिशाली स्थिति है। तो ये स्थिति जो है हमारी सबसे पावरफुल स्थिति है। तो ऐसे जब हम होते हैं तो जितनी जितनी विचार कम होते जाएंगे, हम गहरी शांति की अनुभूति करते जाते हैं। चार पे और गहरी शांति, तीन पे और गहरी शांति, दो पे और गहरी शांति, और एक पर परम शांति, है ना, परमानंद की स्थिति। दो माना आनंद, दो चार माना, एक माना परमानंद, और एक पर विक्रम विनाश शुरू होते हैं। जो भी हमने पुराने विक्रम किए ना, वो एक और एक से कम, 0.9, 0.8, एक से भी कम विचार हो जाए तो हमारे क्या होते हैं, विक्रम विनाश, जो हमारे पुराने रिकॉर्ड किया हुआ है यहां पर, वो विनाश होने लगते हैं। तो जितनी भी हमारी जो पुरानी स्मृतियां हैं, उसने ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा किया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, मेरे को शरीर में बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो सब अंदर स्मृतियां खत्म होने लगती है, वो नई स्मृति जागृत होने लगती है, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति जागृत होने लगती है, मैं परमात्मा की संतान हूं, नए मॉलिक्यूल बन जाते हैं ब्रेन में, मेरे सारा संबंध उसके साथ है, दुनियादारी के साथ नहीं है, मेरे इस संसार रूपी ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। तो ये अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, तो नए संस्कार बनने लगते हैं, नया स्वभाव बनने लगता है। आपको याद होगा होली वाली मुरली में, आप सबको याद होगा, बाबा ने कहा था पहले पुराने स्वभाव संस्कार को अग्नि में जलाओ, योग अग्नि में जलाओ, तब परमात्म मिलन में रंग के रंग, संघ के रंग में रंग सकते हैं। बिना पुराने संस्कार स्वभाव को जलाए हम पुराने परमात्म संघ के रंग में नहीं रंग सकते। तो पहले पुराने संस्कार स्वभाव कौन से, ये पांच विकार और उनके बाल बच्चे, उनको जब तक नहीं जलाया है योग अग्नि में, तब तक हम परमात्म मिलन नहीं मना सकते हैं। तब तक ऐसा ही रिश्ता है जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर पेशेंट के पास आता है, पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो क्या कहेगा, मैं डॉक्टर से मिलके आया कि डॉक्टर को दिखा के आया। पेशेंट मिलके नहीं जाता है, पेशेंट डॉक्टर से दवाई लेकर के जाता है और फीस लेकर के जाता है, उसे मिलना नहीं कहते, मिलना कहेंगे उसको, मिलना नहीं कहेंगे। तब तक हमारा ऐसा ही है, हम जब तक अपना पुराना स्वभाव संस्कार जला नहीं देते बाबा की याद से, तब तक सचमुच में परमात्मा से मिलन नहीं मना सकते। मिलन होता है समान का मिलन, बराबर का मिलन, जब हम समान बन जाते हैं, सातों गुणों में भरपूर बन जाते हैं, तब हम परमात्मा से मिलन मना सकते हैं। अर्थात जब तक हमारे अंदर काम विकार का अंश है, काम का अंश क्या है, आलस और अलबेलापन, काम विकार स्वपन संकल्प में भी खत्म करो, साथ साथ आलस्य और अलबेलापन उसको भी स्वपन संकल्प में खत्म करो, तब हम बाप से मिलन मना सकते हैं। क्रोध को जड़ से खत्म करो, साथ साथ उसके बाल बच्चे जो है उसको रोब डालना, दूसरों में दोष निकालना, बदलने की भावना रखना, उसको जड़ से खत्म करो। आज ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, अच्छा बाकी तो जब तक हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। लोभ के दो बच्चे हैं, शक और अनुमान। तो लोभ खाली पैसे का लोभ नहीं होता है, नाम और मान का भी लोभ होता है। नाम मान शान चाहिए, पूछ, मेरे को पूछा नहीं है ना, इसलिए पूछ वाले बंदर कहते हैं ना। तो इसका भी लोभ होता है। जब तक मन में ये इच्छा है ना, नाम मान शान की इच्छा है, लोभ है पैसे का या किसी चीज का, नाम मान का भी लोभ है, तब तक हम बाप से मिलन नहीं मना सकते। इसी तरह से मोह के दो बच्चे हैं, चिंता और भय। जब तक मन में चिंता और भय रखते हैं तब तक भगवान से मिलन नहीं मना सकते। अहंकार के भी दो बच्चे हैं, कौन कौन से, जल्दीबाजी करना, हर काम में जल्दी, जैसे मैं कहता हूं ऐसा ही होना चाहिए, मैं समझदार हूं, मेरी बात माननी चाहिए, ईर्ष्या द्वेष। जब तक मन में किसके प्रति भी ईर्ष्या है, हम भगवान से मिलन नहीं मना सकते। तो परमात्म संग में रंगने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनको खत्म करना पड़ेगा। चले अभी 2 मिनट हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी बातें और बता के पूरा करें। तो जैसे कि आपने सुना, ये जो 5 विकार हैं, जब तक इनको जलाया नहीं है, पुराने स्वभाव संस्कार को जब तक जलाया नहीं है, तब तक हम परमात्मा से, सुप्रीम सर्जन से, सुप्रीम डॉक्टर से हम मिलन नहीं कर सकते, अर्थात हम स्वस्थ नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। तो 5 विकार को जन्म कैसे होता है, अर्थात अशांति कैसे है, जैसे बताया बीमारी, डिस ईज, बीमारी आती कैसे है, अशांति आती कैसे है। मैंने बताया जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, शांति आती है, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्तियां, है ना। ज्ञान ABCD को रिवाइज करो बार बार मन में, पवित्र बनने का दृढ़ संकल्प लो तो शांति आती जाएगी, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्तियां आती जाएंगी, और हम सतो प्रधान बन जाएंगे, सातो एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बन जाएंगे तो देवता बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, फरिश्ता बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, हम बाप के साथ वापस घर जाएंगे, साथी बन के जाएंगे, बराती बन के नहीं जाएंगे, है ना। साथी बन के जाना है सभी को, या बराती बन के जाना है, साथी बन के जाना है। और इसकी बजाय हम 15 की फ्रीक्वेंसी पर अपने देह को याद करें, देह के संबंधों को याद करें, अपने बाल बच्चों को याद करें, पति पत्नी को याद करें, माता पिता को याद करें, भाई बहन को याद करें, तो क्या होता है, अपने पुराने स्वभाव संस्कार को याद करें, अरे मेरे को तो, मेरा स्वभाव तो जल्दीबाजी का है, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूं, मेरे को तो बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है ना, मेरे को तो हर काम में जैसे मैं कहता हूं ऐसे ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, ये हमारा पुराना स्वभाव है ना, देह का स्वभाव है, संस्कार है, बात बात पे गुस्सा करने का, बात बात पे झूठ बोलने का, है ना, किसी को कड़वा बोल देने का, किसी को चिड़चिड़ा, किसी को इरिटेट करने का, कई लोगों का स्वभाव होता है, तो ये पुराने संस्कार हैं, तो इनसे हमारे विचार बढ़ जाते हैं। तो 15 की बजाय 20 विचार, देह के बारे सोचोगे 20 विचार हो जाएंगे, संबंधों के बारे सोचोगे 25 विचार हो जाएंगे। तो जैसे ही हम विचार बढ़ते हैं तो हम अंदर अशांति महसूस करते हैं, गर्म हो जाता है माथा, गर्म गर्म माथा गर्म लगने लगेगा, तो चिंता होने लगेगी, भय आएगा, डर लगेगा, फिर इरिटेशन आने, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, फिर क्या होगा, फिर चिड़चिड़ापन आएगा, फिर हमें जब भय लगता है ना तो हम क्या कहते हैं, अरे उसको अपना दोस्त बना लो, इसको कम से किसी को तो हमारा ध्यान रखना चाहिए, इसको तो हम अपना बना लें, भगवान को अपना नहीं बनाना, उसको तो अपना बना लें, तो अटैचमेंट, मोह आ जाता है, फिर मोह आ गया, फिर मोह के बाद हम लोभ करने लगते हैं, अब इसको इतना बनाया तो इसको पालना करनी पड़ेगी, फिर उसे लोभ आने लगता है, फिर लोभ के साथ साथ फिर फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, 30 विचार रहने लगते हैं, ज्यादा लोग संबंध हो गए, ज्यादा पैसा हो गया तो संबंध, तो ज्यादा हम लोग विचार और बढ़ गए, 30, तो गुस्सा आने लगता है, कोई इसको छुएगा ना, जो हमारा है, जिसको हम अपना समझते हैं, उसको कुछ हुएगा तो गुस्सा आने लगता है। तो 30 हो गए, फिर 35 हो गए, फिर और तेज गुस्सा आता 40 हो गए, फिर काम विकार, 40 पे काम विकार, 45 काम विकार, और 45 के ऊपर पागल, मैड। तो इसलिए कहते हैं ना, ये विकार हमको क्या बना देते हैं, पागल। क्या कहते हैं, ये काम विकार में पागल है, ये क्रोध में पागल है, ये लोभ में पागल है, ये मोह में पागल है, ये अहंकार में पागल है ना। तो ये हमको मैड बनाते हैं, विकार हमको कहां ले जाते हैं, पागलपन की तरफ। और 45 के आसपास हम क्या महसूस करते हैं, हमारी एनर्जी खत्म होती है, जितने ज्यादा विचार चलते हैं एनर्जी खत्म हो जाती है, तो हम थका थका दिमाग रहता है, थकी थकी आंखें, थका थका चेहरा, खुशी गायब। तो 45 के ऊपर डिप्रेशन हो जाता है, उदासी, गहरा डिप्रेशन, उदासी आ जाती है, या स्किजोफ्रेनिया, पागल, मतलब हमें पता ही नहीं लगता हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जो चीज नहीं हो रही वो आपको दिखाई देने लगती है, उसको हलुसिनेशन कहते हैं, डेल्यूजन्स, सुनाई देने लगती है बातें, जो चीजें नहीं भी हो रही उसके बारे में शक अनुमान इतना बढ़ जाता है, हम पागल, लोग हमें पागल कहते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है दुनिया में। तो इंसान इसलिए आज नींद आनी बंद हो जाती है, तो इसी कारण आज की सब बीमारियां, डिप्रेशन, उदासी आना, स्किजोफ्रेनिया होना, नींद का ना आना, ये सब आज के का इन विकारों कारण हो रहा है, एनर्जी बिल्कुल खत्म होती जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा है, बाबा की जो श्रीमत है ना, डायरेक्शन क्या है, जो श्रीमत है ना बाबा की, वो डायरेक्शन ये है बाबा की कि जो बाबा ने कहा ना, दिल में बाप है और साथ में बाबा है। तो दिल में तो बाबा आ गया, सच्ची दिल साफ दिल माना, सच्ची माना, सच्ची का मतलब क्या है, अपने अनादि आदि पावन सत्व प्रधान स्थिति में स्थित रहो, अपने अनादि माना जो परमधाम की स्थिति है, आत्मिक स्थिति, और आदि माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मा, वो स्थिति में स्थित रहे, उस पावन सत्व प्रधान स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, बोल बोलना, कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, स्वप्न में आना, ये हमारी सत्यता है, यही हमारी सच्चाई है, इस स्थिति में स्थित होकर हर काम करें तो हम, हमारा दिल सच्चा है, साफ माना, जो बात जैसी है वैसी हम रखें, अर्थात अपने को हर समय आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा देखें, और ड्रामा का पॉइंट सदा याद रखें, तो हमारे दिल सच्ची और साफ है, तो बाप सदा हमारे दिल में है और हम बाप के दिल में है। साथ माना परमात्मा की श्रीमत सदा हमारे साथ हो, परमात्मा की श्रीमत क्या है, देह और देह के संबंध, देह, देह के संबंध, देह का स्वभाव संस्कार, और देह के पदार्थ को भूल, बुद्धि से भूल, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और विक्रम विनाश होंगे तो हम पावन सत्व प्रधान बनेंगे। तो पहले चारों बातों को भूलो, फिर अपने को आत्मा समझ सकेंगे, फिर बाप को याद कर सकेंगे, और बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, विक्रम माना जो हमारे हमारे मेमोरी मॉलिक्यूल्स जो बन गए पुरानी बातों के, वो खत्म हो जाएंगे, और फिर नए संस्कार पैदा होंगे पावन सत्व प्रधान बनने के, और उससे हम, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक जब हम पावन सत्व प्रधान बनेंगे तो हमारा चेहरा सदा खुशनुमा रहेगा, हमारी चलन, चेहरा बना, ये चेहरा सातों गुणों से भरपूर, बड़ा ऑरा, ऑरा माना सातों एनर्जी हमारे आसपास इकट्ठी हो जाती है, उसको ऑरा कहते हैं। अगर हमारे सिर्फ चार ही विचार होते हैं तो हमारा ऑरा लगभग पहले सोफे तक पहुंच जाता है, इतना बड़ा ऑरा, अर्थात इतनी दूर तक शांति, प्रेम, खुशी के संकल्प, वो वाइब्रेशन फैले रहते हैं, इतनी दूर में कोई व्यक्ति आएगा उसको अपने आप, आपसे बिना बोले शांति खुशी महसूस होगी। जैसे जैसे बाबा की जब पधरामणी हुई परसों, तो सारा हॉल कैसे हो गया था, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद के संकल्पों से भर गया, वाइब्रेशन से भर गया, क्योंकि बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, शिव बाबा की 0, ब्रह्मा बाबा की 1। तो जब हमारे 4 होंगे तो क्या होगा, यहां तक, 2 हो जाएंगे तो आधा हॉल भर जाएगा, 1 हो गया तो पूरा हॉल भर जाएगा, सारे हॉल में ऑटोमेटिक शांति, प्रेम, खुशी, आनंद हो जाएगा। जैसे जब दादियां आती हैं, जानकी दादी जी आती हैं, गुलजार दादी जी आती हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक सारे हॉल में शांति, प्रेम, खुशी हो जाती है। तो ऐसे ही जब हम इस बात को अटेंशन रखेंगे बार बार, ये एबीसीडी को बार बार रिवाइज करते रहेंगे मन में, बाबा की मुरली को बार बार रिवाइज करेंगे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक जो बाबा ने कहा सुबह 4 बजे उठो, आधा घंटा आनंद की स्थिति में योग करो, ऐसा ऐसा योग नहीं, नींद वाला योग नहीं, अलर्ट होके ब्रश करके फ्रेश होके अच्छे से खुशी में आके बाबा को याद करो, ताकि आनंद की स्थिति आ जाए, वो सातों एनर्जी अंदर भर लो, और फिर 8 बजे तक साइलेंस में रहो, क्योंकि 8 बजे दूसरे हार्मोन निकलने वाले, एड्रिनल ग्लैंड वाले। तो सुबह से लेकर के 8 बजे तक आपकी जो भी टीम है, टीम माना स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प में जो आप भरते हैं उसके अनुसार वो स्ट्रेस हार्मोन निकलने वाले हैं। अगर आपने नेगेटिव भर लिया तो क्या होगा, आपके अंदर टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा निकल आएंगे 8 बजे, और फिर सारा दिन आपको जल्दी चिंता गुस्सा अपने आप ही बनी रहेगी, आपको एफर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, परेशानी रहोगे सारा दिन। 8 बजे तक साइलेंस में रहेंगे तो क्या होगा, और 7 से 8 मुरली पढ़ लो, मुरली माना पॉजिटिव टीम, उसमें बाबा हमको सिर्फ 100% पॉजिटिव स्मृति देता है, हम देवता थे, सोने के महल थे, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, वहां कोई रोग नहीं है, भारी मौसम है, सब सुख सुखदायी संबंध है, वृत्ति पावरफुल पॉजिटिव होती है, सबके प्रति आत्मिक वृत्ति, भावना सबके प्रति शुभ भावना, संकल्प कौन से, श्रेष्ठ संकल्प, सारे विश्व कल्याण के संकल्प बाबा हमें मुरली में देता है। तो उससे क्या होता है, 8 बजे जो हार्मोन निकलेंगे खुशी के निकलते हैं, टेंशन वाले कम खुशी वाले ज्यादा, तो सारा दिन खुशी आनंद बना रहता है, शांति बनी रहती है, हर काम एफिशिएंसी से होता है, कहीं चिड़चिड़ापन नहीं आता है, जहां भी आप कार्य करते हैं वहां पर भी शांति प्रेम के वाइब्रेशन फैले रहते हैं। तो इसलिए चार्ज, जैसे आप मोबाइल अपना चार्ज करते हैं ना 4 से 8 सुबह सुबह उठते ही मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, ऐसे ही 4 से 8 हमारा ये बैटरी चार्ज करने का समय, 4 से 5 योग, 5 से 6 स्नान, 6 से 7 वॉकिंग, 7 से 8 मुरली, और उसके बाद फिर साधन आप काम करो, तो ऑटोमेटिक बाबा की याद भी बनी रहेगी, परमात्मा की याद में खाना खाओ, परमात्मा की याद में हर काम करो, और फिर शाम को सोने से पहले फिर बाबा ने कहा गुड नाइट कर लो, है ना, बाबा को फिर सारा अपना पोता मेल देके और बाबा की याद में 5 मिनट बैठ के फिर बाबा की याद में सो जाओ। हमारा बेड कौन सा है, जो हमारा बेड है ना, बेडरूम में जो बेड होता है वो तो हमारा गैरेज है, वहां बॉडी को अपनी पार्क करो, और हमारा बेडरूम कहां है, सूक्ष्म वतन, और बेड कौन सा है, बाबा की गोद, ब्रह्मा बाबा की गोद। तो बाबा को याद करो, अपनी गाड़ी को पार्क करो कहां पर, अपने बेड पर, और अपने बेडरूम में चले जाओ, कभी गैरेज में ना सोना, गैरेज में सोओगे नींद नहीं आती, बस सपने आते हैं खराब खराब, सब मच्छर आते हैं ना, है ना, ऑक्सीजन में नहीं होती, तो ऊपर चले जाओ और वहां जाके सो जाओ, फिर बाबा अपने आप समय पर उठाएगा, आपको अलार्म नहीं चाहिए, फिर समय पर उठाएगा, समय पर उठते ही बाबा पावरफुल योग लगाएगा। तो जब ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपके अंदर सातों एनर्जी भरी रहेंगी हमेशा, सतो प्रदान स्थिति होगी, और तभी खुशनुमा चेहरा बनेगा, और तभी हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ माना स्वामाने आत्मा स्थामना स्थित, स्वामाने आत्मा स्थामना स्थित, अर्थात स्वस्थ वो है जो सदा आत्मिक स्थिति में स्थित है। तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित है उसको परमात्मा की याद स्वतः ही है, तो सातों एनर्जी से अपने आप भरपूर रहता है, इसलिए वो सदा उसके अंगों में एनर्जी बहती रहती है, वो कभी बीमार नहीं होता। जैसे हमारी दादियां हैं, शरीर भले पुराना है, 94 इयर्स का है, 82 साल का है, 85 साल का है, किंतु आज भी इतनी एनर्जी उनके पास है, बॉडी को 7000 यूनिट्स की एनर्जी चाहिए, किंतु परमात्मा की याद जब आपकी एक है ना फ्रीक्वेंसी, तो आपकी एनर्जी 1 लाख है, 2 फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी आपकी एनर्जी 50,000 है। अगर आप आनंद में रहते हो सदा, परमात्मा की याद में खोए रहते हो, तो क्या हो, आपकी एनर्जी 50,000 है, आपको हार्ट की बीमारी है पुराने हिसाब किताब के कारण, तो आप 5,000 हार्ट को दे दो, हार्ट चुप रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा, कमर में दर्द भी है, कमर को 5,000 और दे दो तो कमर चुप रहेगी, बोलेगी आपको तंग नहीं करेगी, तो भी 40,000 आपके पास बची नहीं बची, तो भी आप खुश रह सकते नहीं रह सकते, पैर घुटने भी खराब है मान लो पुराने कोई हिसाब किताब कारण, इसको भी 4,000 दे दो तो 14,000 दे दी, 36,000 तब भी आपके पास है, तो आप खुश रह सकते हैं ना, बीमारी होने के बाद भी आप खुश रह सकते हैं, आपके भले सारे शरीर में बीमारी हो जाए तो भी आप सदा खुश की फीलिंग, यही दादियों का रहस्य है उनकी हेल्थ का, क्योंकि वो इतना सदा बाबा की याद में कोई रहती हैं, भले शरीर में जो मर्जी होता रहे तो भी खुश रहती हैं, आनंद सबको खुशी में लाती रहती, आनंद में लाती रहती है। ऐसा ही हमें करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ए फॉर आत्मा, बी फॉर, जोर से बोलो, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर। तो ये एबीसीडी याद कर लो बस, और कुछ भी नहीं है। और एक और है हॉटलाइन बाबा की, हॉटलाइन नंबर जो कभी भी एंगेज नहीं होता है। बाबा का हॉटलाइन नंबर क्या है? कहीं भी हो आप, उनका हॉटलाइन नंबर मैं आपको दे देता हूं आज, स्पेशल नंबर है वो, है 000000। बस कहीं भी हो, मैं आत्मा जीरो, मेरा बाबा जीरो, जीरो बना बिंदु, और अभी तक जो कुछ हो गया मल्टीप्लाइड बाय जीरो, है ना। तो बस आपका कनेक्शन लग जाएगा, चलते फिरते उठते बैठते ये ट्रिपल जीरो डायल करते रहो और हॉटलाइन बाबा से बात करते रहो। ओके, ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करें, पावरफुल याद में बैठे। अभी ये नंबर डायल करना है ना, पहले एबीसीडी करना, फिर 000000 डायल करना, एकदम पावरफुल कनेक्शन लगेगा।
बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार,
दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत शिक्षाएं जीवन का आधार,
सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया,
पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया,
अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार, शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।